अब हम सोचें कि सारे मर गए और थोड़े से बचे, लेकिन हुआ क्या, उन्हीं थोड़े बचे वो में फिर बिगाड़ आ गया। अब यहां से हजरत सालेह की कौम का तस्करा है, वह इला समूद अखाहुम सालेहा, और समूद की तरफ हमने भेजा उनके भाई सालेह को। भाई कहने से फिर वही बात समझ लीजिए कि हर नबी अपनी कौम ही के अंदर से आता है। ये लोग मदियन में रहते थे, इसीलिए जिस बस्ती में ये रहते थे उसको मदायने सालेह भी कहा जाता है। शहर का नाम हिजर था, आगे सूरह हिजर पढ़ेंगे, वो भी इसी कौम के नाम पर है सूरत। कहते बहुत बहादुर दौलतमंद थे, और इस कौम के अंदर भी बिगाड़ आया था, किस नाम पे, आर्किटेक्ट के नाम पे, यानी फन आर्ट के नाम पे इतने बढ़ गए कि अल्लाह ताला ने इनके नाहुन कहते हैं पीतल के कर दिए। इतनी लंबी इनकी उम्रें थीं, कई कई सौ साल लंबे होते ये मट्टी चूने के घर इनकी जिंदगी में गिर जाते। तो इन्होंने कहा कि अब ये कैसे करें, हमारी तो नस्लों के लिए हमें घर चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इनको ताकत दी कि ये अब पहाड़ों में अपने घर बनाते थे। अगर आप नूरुल कुरान वेबसाइट पर जाएं तो साइड में जो मेन्यू है राइट साइड पे, उसमें प्रेजेंटेशंस का एक लिंक है, उसमें खोल के ना तो आप देख सकते हैं कि डिस्कवर हुए घर, यानी हैरत गुम हो जाती है कैसे घर इन्होंने बनाए हुए, कार्विंग किए हुए, जैसे इंग्रेविंग होती है ना, आज लोग कितनी मशीनें और टूल्स को यूज करके करते हैं, ये पहाड़ों के अंदर ही अंदर घर बना लेते थे। लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई तो इन पहाड़ों को भी अल्लाह ताला ने इनके लिए इनके कब्रिस्तान बना दिए। दौलत की कसरत इनके अंदर भी, अल्लाह से गाफिल हो गए। ऐसे लोगों के सर पर दौलत का जब नशा चढ़ा तो अल्लाह ताला ने इनको भी पटख के रखा। पहले हजरत सालेह आए, दावत दी, वह इला समूद अखाहुम सालेह, और समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, कहा कि मेरी कौम नहीं है तुम्हारा कोई माबूद अल्लाह के सिवा। قد جاءتكم بينة من ربكم, आ गई तुम्हारे पास बैजीना तुम्हारे रब की तरफ से। यहाँ बैजीना क्या है, इस कौम ने एक अनोखा सा मुतालबा किया, कहने लगे कि समूद हम तुम्हें नबी नहीं मानेंगे। कहते कि हजरत समूद जो थे ना, इनके पास जब नबी बनाए गए थे तो उस वक्त बिल्कुल जवान थे, यंग थे, लेकिन सारी जवानी इनके पीछे लगा दी, ना माने, हत्ता कि इन पे बुढ़ापा आ गया। तो इस कौम ने ये सोचा कि हजरत सालेह से कैसा मुतालबा करते हैं कि जिसको ये पूरा ना कर सके, और इस तरह हम सच्चे हो जाएंगे और इनकी मुखालफत करते रहेंगे। कहा अच्छा भी क्या मुतालबा है, कहा ये फुलां पहाड़, छोटी सी चट्टान थी, कातिबा उसका नाम था, कहा कि ये फटे, इसके अंदर से एक ऊँटनी निकले, और वो ऊँटनी फिर एक बच्चा दे, बस ये जादू का शोशा हो गया तो हम आपको नबी मान लेंगे। हैरत की बात नहीं है, नबियों ने कभी नहीं कहा कि हम जादूगर हैं, शोबदेबाज हैं, लेकिन लोग दीन के नाम पे शोबदे देखना चाहते हैं, मिरेकल्स, करामात, ये करो, उन्होंने ये किया, फुलां का हाथ कब्र में से निकला, फिर उसने उसको तसल्ली दी। पढ़ के देखिए जरा किताबें, मैंने ये बात ऐसे नहीं कही, मैं नाम नहीं लेना चाहती किताब का, इतनी मारूफ किताब है, शायद कोई घर हो जिसके अंदर वो किताब मौजूद ना हो। बाज़ लोग तो सिर्फ उसी की तबलीग करते हैं कि बस इस किताब को पढ़ते जाओ और अपने लिए फजीलतें ढूंढते रहो। उस किताब में लिखा हुआ है कि फलां कब्र पे कोई गया और उसने जाके साहिब कब्र को पुकारा, फिर थोड़ी देर में कब्र से उस बुजुर्ग का हाथ निकला और उन्होंने उससे मुसाफा किया। मैं हवाले के से बात कर सकती हूँ अगर मुझे किसी की दिल सोजी का डर ना हो। आप कहते हैं कुछ नहीं होता, ऐसी बातें ना करें, जो करते हैं करने दें, हम नहीं किसी को रोकते, लेकिन शिर्क शिर्क होता है, चाहे कोई प्यार के नाम पे करे, चाहे गुस्से के नाम पे करे। इन्होंने भी कुछ ऐसे ही मुतालबे किए, और लोग जो आम लोग होते हैं ना, वो इस तरह के मुतालबे करके ही दीन को खुश हो रहे होते हैं। अच्छा, यानी अब देखिए कि बास लोग हैं ना, ख्वाब भी इस तरह सुनाते, मैं ऐसे गई, फिर वहाँ ग्रीन रंग था, फिर ये हुआ, फिर बादल उड़ रहे थे, साथ ही लो, अच्छा अब तुम तो बहुत पहुँच गई, अच्छा अब तुम्हें तो जन्नत दिखी है, अच्छा फिर तो ये होगा। इन चीज़ों से दीन का क्या ताल्लुक है? इन्होंने ये कहा कि शायद ऐसा कहेंगे, होगा कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह ने कहा, लो क्या बड़ी बात है, जो माँ के पेट को फाड़ के बच्चा निकाल सकता है, पहाड़ तो उससे बहुत बड़ा है। इनके सामने पहाड़ फटा, उसमें से ऊँटनी निकली, बच्चा दिया, चंद दिन तो बड़े दबे रहे, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर आ गए अपनी असल औकात के ऊपर। और एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने फिर उसी ऊँटनी की जान लेने और हजरत सालेह के कत्ल की कोशिश करने के जवाब में इनके ऊपर अजाब दिया। अब देखिए अल्लाह की जात के लिए कुछ मुश्किल नहीं, कभी अल्लाह को चैलेंज ना करें। यहाँ से एक अमल की बात नोट करें, बस लोग क्या कहते हैं, मुझे किसी ने सवाल भी ये पूछा मुझसे, और अक्सर लोगों की आदत होती, वो कहती मेरा कुछ काम हो ना तो मैं अल्लाह ताला से इस तरह बात करती हूँ, अच्छा अगर आज मैं जाऊँ तो ये चीज़ पक्की हो तो मैं समझ जाऊंगी कि फिर ये बात ठीक है। कोई भी उनका मसला होता है ना, मिसाल देती हूँ कि किसी को कुरान की क्लास की दावत दी कि चले भाई आप क्लास वीकेंड की अटेंड कर लें, अब उसको करनी है नहीं करनी, सिंपल सी बात है, खुद ही हालात को देख ले, कर सकते हैं कर ले, नहीं कर सकते तो ना करें। तो कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं, अच्छा ऐसा करती हूँ कि अल्लाह ताला मैं करूँ कि ना करूँ मेरे हक में ठीक है नहीं, चलो आज मैं घर जाती हूँ, अगर आज आलू गोश्त पका हुआ ना तो ये आपकी तरफ से इशारा होगा कि मैं ये क्लास अटेंड कर लूँ, और अगर करेले पके हुए तो इसके अंदर क्लास कड़वी होगी, मैं नहीं लेती। कभी ना करें, शैतान बहुत बहकाता है ऐसी चीजों से, यकीन करें। एक सिस्टर थी तो उन्होंने कहा मैं तो करती ऐसी थी, मैंने कहा जब अल्लाह ने इस्तखारे का तरीका खोल दिया तो आप ये क्या बेकार काम करती, कहती ऐसी आजमाती थी, अच्छा मैं खोलूंगी ये पेज खोला तो फिर ये इसका मतलब है और ये खोला तो ये। लोग फाले निकालते हैं इस तरह, कुरान को बंद करके खोलते हैं, अच्छा जो सफा आएगा वही हमारा मतलब होगा, और वो जाके लोगों से पढ़वाते फिरते हैं कि इसमें क्या मैसेज लिखा है। टोने टोटको का नाम दीन नहीं है। इन्होंने भी कुछ इस किस्म की बात की, अब जब वो आ गई का कज्जात कुम बही ना तुम मेरे रब्बी को, ये बही ना थी, ये दलील थी, नबी की सच्चाई की दलील थी, लेकिन लोगों का हाल क्या होता है कि दलाइल को तो झुटला ही देते हैं। हाजी ही नाकतुल्लाही लकुम आयतन, ये तुम्हारे लिए अल्लाह की नाका है एक निशानी। नाका जो है ना फीमेल ऊंट को कहते हैं, फीमेल कैमल, मुअन्नस ऊंट की थी, और अल्लाह ने इसको अपनी तरफ निस्बत की इसकी, क्यों? इज्जत के लिए। ऐसी निस्बत को निस्बत बराए शर्फ कहते हैं, निस्बते तशरीफी, शर्फ के लिए, इजाफत बराए तशरीफ, कोई भी नाम याद रख लें। जैसे बैतुल्लाह का लफ्ज है, सारे घर अल्लाह के लेके, खाना काबा को बैतुल्लाह क्यों कहा जाता है? क्या नौसुबिल्ला अल्लाह वहां आके रहते हैं जैसे हम घरों में रहते हैं? नहीं, इज्जत दी। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि कलीमतुल्लाह, ठीक है, तो इसलिए इसको नाकतुल्लाह कहा कि सारी ऊँटनियाँ अल्लाह की हैं लेकिन ये ऊँटनी खास तौर पे इन्होंने मुतालबे से मांगी थी तो लिहाजा ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से इस पे आ गई बात। फिर उसके बाद फरमाया कि ये ऊँटनी है तुम्हारे लिए निशानी, फजरूहा, छोड़ दो इसको, यानी इसको अब सताना नहीं, क्योंकि अक्सर लोग निशानियों की नाकदरी करते हैं, पहले मांग लेते हैं फिर उसके तकाजे पूरे नहीं कर सकते तो उसी के दुश्मन बन जाते हैं। कहा इसको हाथ ना लगाना, सताना ना इसको, ताकुल फी अर्दिल्ला, ये अल्लाह की जमीन में खाए, इशारा दिया कि अब इसके खाने से तुम परेशान ना होना, जिस अल्लाह ने इसको पैदा किया है वो जात इसको खिला पिला भी सकती है, इसको रिस्क भी दे सकती है, और तुम इसको सताना नहीं। कहते हैं कि वो जहां से जाती पूरे पूरे खेत खा जाती, जरा अल्लाह की मांगी हुई चीज थी। देखिए जितनी बड़ी नियत करेंगे उतने बड़े मसाइल आएंगे, छोटी छोटी नियतें करें छोटे छोटे मसलों में जीते रहें जिंदगी में, बड़े काम करने बड़े अजम आएंगे, बड़े इरादे आएंगे, बड़ी मुश्किलात आएंगी। तो अब इस ऊँटनी के जरिए आजमाइश शुरू हो गई, इनको मुश्किल लगी, ये क्या हुआ, जहां जाती ये खाती और उसके डेल डोल से इनके जानवर भाग जाते थे, अब इनकी मईशत खराब हो गई, इकोनॉमी इनकी बिगड़ने लगी, तो गुस्सा आया का वला तमस्सू हबिसू, मत छूना इसको बुराई के साथ, क्या होगा, फया खुजकुम अजाबुन अलीम, फिर पकड़ लेगा तुमको अजाब दर्दनाक, बहुत सख्त किस्म का अजाब आएगा अगर तुमने इसको नुकसान देने की कोशिश की। तो अब देखिए कि यहाँ अजाबुन अलीम की बात आ गई ना, क्योंकि अब हजरत नूह का अजाब जो था थोड़ा दूर हो चुका था, जिसमें एक दफा पूरी इंसानियत तबाह हुई थी, तो इनको फिर दर्दनाक अजाब की धमकी दी। बस कुरु इस जालकुम खुलफा मिम बादी आदिन, और याद करो जबकि तुमको खलीफा बनाया कौम आद का, यानी आद के बाद तुमको दुनिया में भेजा, वबव्वा कुम फिल अर्दी, और ठिकाना दिया तुमको जमीन में, बव्वा युबव्वी कहते हैं जगह हमवार करने को, आगे भी ये लफ्ज आएगा हजरत इब्राहिम के बारे में और पीछे भी आ चुका है। जी कहाँ आ चुका है कोई तो बता सकता है, कोई जगह याद आई? इसी लफ्ज से बव्वा, इसी रूट से एक लफ्ज पीछे गुजर चुका है, यही मफहूम है बिल्कुल, उसमें भी लफ्ज बिल्कुल ठीक बोला है इन्होंने, अब इनको ये नहीं याद आ रहा कि आया कहाँ था। वाइस गदाउ तमिन अहलिका तो बव्वी मकाइद लिल कताल, चले आप बता दें। ओहद के तस्करे में नबी सल्लम की तरफ से आते ना, वाइस गदाउ तमिन अहलिका, जब सुबह सुबह निकले आप अपने घर से, तो बव्वी मकाइद लिल कताल, आप लोगों को जगह हमवार कर रहे थे लड़ने के लिए, तो वही लफ्ज अब यहाँ देखे बव्वा यु बव्वी से। अब देखिए रूट पता हो तो पकड़ लेते हैं ना चीज को, कहीं ना कहीं से उसको टांग बाजू हाथ पकड़ा हो ताकि बंदा उसको बचा सके है। तो वह बब्वा को फैलर दी, हमने ठिकाना दिया तुमको जमीन में। तत्तखिज़ूना मिन सुहूलिहा कुसूरन, तुम बनाते थे उसकी नरम मट्टी से महल। सुहूल क्या है? सहल, सीन हालाम उर्दू में आता है। एक दुआ है नबी सल्लम की कि अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन। सहल आसानी को कहते, सहूलत लफ्ज उर्दू का वो वही है, बड़ी नरम मट्टी के लिए यहाँ है। और कसूर, ये वो कसूर नहीं है जो उर्दू वाला कसूर है, ये कसर की जमा है। और कसर कहते हैं महल को, कि तुम नरम मट्टी में महल बना लेते थे। वतन हितू नल जिबाला, और तराशते थे तुम पहाड़, तुम तराशते थे पहाड़ों को। तन हितू उनका रूट क्या होगा भाई जी, आप बताएं। तन हितू उनका रूट बताइए। देखिए कि लफ्ज में जितने लफ्ज होते हैं ना, जरूरी नहीं होते ये रूट के लफ्ज हो। चलिए इस पे आप गौर करिएगा, तन्हे धुन पे। किसी से नहीं पूछना, खुद ढूंढेंगे। मैं कुछ नहीं भी बताऊंगी, ना कुछ कहूंगी हाँ के ना, लेकिन आप किसी से नहीं पूछेंगे, खुद अपने तौर पे गौर करें, इसके मुख्तलिफ एंगल्स देखिएगा। चलो ये हिंट दे देती हूँ। वतन्हे तू नल जिबाल बुयूता, और तुम तराशते हो पहाड़ों में से घर। बुयूत बैत की जमा है, यानी तुम अब इन पहाड़ों के अंदर से घर बना लेते हो, तराश लेते हो और तुम उनके अंदर रहते हो। जरा सोचे, आप कहते हैं कि जो ताजमहल है आगरा में, उसकी क्या खूबी है? आप में से किसी ने देखा? वो एक पत्थर के अंदर तराशा हुआ है, यानी अब आपको वो एक व्हाइट कलर का संगमरमर दिखता है ना, पत्थर को तराशा हुआ, वो भी तन्हे तून है असल में, लेकिन उसमें भी कई जोड़ है, मैंने करीब से भी उसको देखा है। लेकिन हदीस में आता है कि जन्नत में जन्नती को जो महल दिया जाएगा वो मोती के अंदर तराशा होगा, मोती के अंदर कार्विंग करी। जैसे अब ये दीवार है, आपने यहाँ जोड़ लगाया, उधर लगाया, छत जोड़ी ना, तो वो पूरा पहाड़ है और उसके अंदर बस कार्विंग कर करके तो वो एक मतलब मकबरा सा बनाया हुआ है। तो इस तरह के काम इस कौम को भी अल्लाह ताला ने दिए हुए थे और इन्होंने उसको किया, लेकिन जितने बड़े और खूबसूरत आरामदेह घर बनते थे उतने ही अल्लाह से दूर हो जाते थे। फस्कुरु आला अल्लाह ही वला तासु फिल अर्दि मुफ्सिदीन, बस याद करो अल्लाह की नेमतें और जमीन में फसाद मचाते ना फिरो। तासु और मुफ्सिदीन दो लफ्ज साथ साथ आए हैं, तो मैं दोहरा देती हूँ जो पहले बारे में आपको मैंने थोड़ा सा फर्क बताया था। मुफ्सिदीन जो ना फसदा है, फासीन दाल से, फसाद तो पीछे भी बात हुई, अभी 2 दिन पहले भी गालिबन हुई थी पिछले लेसन में, बिगड़ना, डीकम्पोज होना, अल्लाह का बंदों से ताल्लुक खराब, इंसानों का इंसानों से खराब। लेकिन तासो जो लफ्ज ना, इसके दो रूट बताए जाते हैं, आइन सा वो, यही ज्यादा सही लगता है लफ्ज। बाज कहते हैं आइन सा भी आता है, लेकिन आइन सा वो या है। अस्सा या उसू क्या होता है? ऐसा फसाद जिसका सोर्स ना पता चले। बस आप कहते हैं नामालूम लोगों ने फायरिंग की, पता नहीं किसने दुश्मनी की आग भड़काई और लोग लड़ने लग गए। फसाद क्या होता है? सामने आके आप गलत काम कर रहे हैं। तासो कहता है पीठ पीछे से छुरा खोपना। अस्सा या उस्सा कहते हैं उस कीड़े को जो ऊन को खाता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई बड़े अच्छे स्वेटर्स लेके संभाले कि अगले साल पहनेंगे, और बाद में जब पहने तो सुराख ही सुराख थे। किस तरह हुआ, कहाँ गया, कोई कीड़ा नहीं दिखा। वो अस्सा या उस्सा वो कीड़ा होता है जो उस ऊन को खा जाता है और हमें दिखता नहीं है। यहाँ दोनों ही बातें आती हैं कि तुम जो हरकतें कर रहे हो इससे अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम में खलल पड़ेगा, लिहाजा तुम फसाद करने की बजाय अल्लाह ताला के हुक्मों को मानो। और इससे ये भी पता चलता है कि जब कौमें नबियों की तालीमात को भुला देती हैं और अल्लाह ताला की दी हुई रहनुमाई जो है उससे फ़ायदा नहीं उठाती, तो फिर उनके अंदर फसाद आते हैं। और हकीकत यह कि इस वक्त दुनिया का फसाद यही है कि लोग अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके, जो बताई हुई जो चीज़ें हैं, उनसे अपने आप को दूर कर रहे हैं। قال الملأ الذين نستكبروا من قومه, कहने लगे सरदार उस कौम के जो मुतकबिर थे उसकी कौम में से। किनको कहने लगे? للذين نستضعفوا, उन लोगों से जो गरीब जानेंगे, कमजोर जानेंगे। لمن آمن منهم, उनमें से जो ईमान ला चुके थे। क्या कहा आप, जरा देखिए कैसे नबी के खिलाफ कर रहे हैं, कान भरने लगे। क्या है यहां से, आप चाहें तो इन्वर्टेड कॉमास में कर ले उनका जुमला। अतालमून अन्न सालेहन मुरसिलुम मेर रब्बी ही, क्या वाकई तुमको यकीन है कि साले हल्ला का भेजा हुआ है? दाई की शख्सियत को मशकूक कर रहे हैं। आर यू श्योर कि ये ठीक बंदा है, इसकी तालीम ठीक है, ये कहाँ से आया पढ़ के, ये है कौन, किस तरीके की ये बातें हो रही हैं, ये कौन है, क्या इसका अकीदा है, जरा तुमने देख लिया? कल भी वही बात थी, आज भी वही बात है। कि लोगों को मशकूक कर देते हैं, शक और शुबे का शिकार कर देते हैं ये बातें कहकर कि देखो तुम्हें पता है जो बंदा तुम्हें अल्लाह की बात बता रहा है वाकई उसके बारे में तुम कुछ जानते हो कि नहीं। और जब मशकूक अंदाज से किसी को देखा जाएगा तो उसकी तो ठीक चीज भी खराब दिखेगी। इनको पता था कि सीधे सीधे अगर हम कहेंगे ना सालेह की बात ना मानो तो कोई मानेगा ही नहीं हमारी बात, तो ये अपने बन के डसते थे और बाज दफा ऐसी बातें करते थे कि जिसमें सुनने वाला वाकई इनको सच्चा समझता था। कालू, उन्होंने कहा, हाँ इन ना बीमा और सिला भी मोमिनून, हम खूब जानते हैं जिसपे वो भेजा गया हम मानते हैं। ये कौन कहता है? जिसको उस बात का यकीन होता है। कोई आपको, अब कोई कहे बात के आपको जो कुरान की तालीम दी जा रही है ये बड़ी मशकूक है, तो आपका दिल कहता है कि ये सच है, ईमान आ गया कुरान पे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कलाम सामने खुलता है उसी से पढ़ते हैं ना। लेकिन जो बेचारा अंदर आके बैठा ही नहीं, वो किसी को आके कह भी दे इधर गुमराही की तालीमात दी जा रही हैं, तो उस बेचारे का तो हक है, उसने तो देखा ही नहीं। देखिए, आप किसी चीज के अंदर आए, दुकान में गए, आपने देखा यहाँ ताज़ा सब्जी है, बासी सब्जी है, ये जगह खुली है, ये पुरानी है, अंदर तो आके बैठे एक दफ़ा, बाहर बैठ के तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। तो वो लोग जिनकी ख्वाहिशों पे पाबंदी लगती थी, जिनके बुत टूटते थे, वो नबियों के बारे में ऐसी बातें करके कौमों को वरगलाते थे, लेकिन वो थोड़े से लोग जो नबियों की दावत को समझ चुके होते थे वो फिर जम जाते थे, वो दीवार बनते थे। इन नबी मा और सिला बिही मोमिनून, हाँ हाँ भाई हमें यकीन है। इससे पता चलता है कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, इंसान जो भी बात करे सुने उसके ऊपर उसको यकीन हो। قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون, वो लोग कहने लगे जो मुतकब्बिर थे कि बेशक हम उस चीज पर जिस पे तुम ईमान लाते हो कुफर करते हैं। देखिए ढिठाई, ढीठपन, पता है सारे दलाइल मिल गए, सब कुछ पता है कि अल्लाह का नबी है, ऊंटनी आ चुकी, जो दलाइल मांगते हैं उसके जवाब दिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद हाल क्या होता है, लोग ना मान के भी नहीं देते। और हकीकत यह है कि जब कौमों की अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह के काम आ जाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की वजह से अब रस्ते में एक रुकावट दिखने लगे, तो फिर वो ना मानने का अजम कर लेते हैं। आपको वही बात समझ आएगी जो आप समझना चाहेंगे। एक होता है जिसको बात समझ नहीं आती, उसका इलाज क्या है कि आप जरा नरम बात करें, आसानी की बात करें, पॉइंट्स में बात करें, स्टेप्स में बात करें, ऐसा बोले वो समझ जाएगा। जैसे आप में से किसी को हो सकता है शुरू शुरू में लफ्जी तर्जमा सीखना याद करना सब मुश्किल था, आ गया ना क्योंकि आपने कोशिश की। लेकिन जो बंदा घर से ये नियत करके आए ना कि मैंने समझना नहीं, मैंने तो समझाना है, उसको नहीं समझ आती। तो कहा आप इनको इनकी बातों पे छोड़ दे, ये जो कुछ कर रहे हैं इनको करने दीजिए, इनकी किस्मत में अगर आप इस तरह से नुकसान उठाना है तो ये उठा के रहेंगे। और इस तरह फिर हुआ क्या, फ़क़रुन नाक़ता, बस उन्होंने कूंछें काट डाली ऊंटनी की। अकारा का जो लफ्ज़ है ना आइन काफरा से उकर, उकर कहते हैं ये, अगर आप अपने पाँव देखें ना एड़ी से ऊपर का जो पट्ठा होता है ना, पट्ठे जिसको बोलते हैं मतलब, इसको उकर कहते हैं। हमारी पाँव की जो एड़ी होती है उसके ऊपर का जो हिस्सा है ना उकर, इसको काट देना तो जानवर जिंदा नहीं रहता। और वैसे भी जब ऊंटनी को मारते हैं या आज भी ज़बह करते हैं तो बाद दफ़ा उसके पाँव के ऊपर पहले ज़र्ब लगाई जाती है ताकि वो भाग ना सके। तो ऊंटनी या ऊंट को ज़बह करने का तरीका था जिसके अंदर ये था कि उन्होंने काट दी, लेकिन इससे मुराद यहाँ ज़बह भी है कि उन्होंने नाका की कुंछें काट डाली। वह अतउ अन अमरी रब्बिहिम, और सरकशी की अपने रब के हुक्म से, सरकशी की नाफरमानी की। ये जो अतूफ का लफ्ज़ है ना आइन ताबाव से, ये भी असल में सरकशी ही का एक अगला दर्जा होता है, बहुत ज़्यादा यानी किसी चीज़ का इंसान का उसके अंदर हक से आगे चले जाना। और फिर क्या हुआ, वक़ालु या सालेहु, और उन्होंने कहा ए सालेह एतीना बीमा ताईदुना, ले आ हम पे वो जिससे तू हमको डराता या जिसका हमें वादा देता। ये दूसरी दफ़ा लफ्ज़ आया ताईदुना का, वादा इसका रूट है, वाओ आइन दाल या डराना, दो नहीं है, वादा और वईद के लफ्ज़ में आता है, यानी ले आ फिर वो साहब जिससे तू हमें डराता है। इन कुंता मिनल मुरसलीन, अगर वाकई तू सच है, अगर वाकई तू रसूलों में से। चैलेंज किया, यकीन नहीं था ना कि ये आएगा, लेकिन हुआ क्या, फहजत हुमुर रजफतु, बस पकड़ लिया इनको जलजले ने, फस बहूफी दारी हिम जासिमीन, बस हो गए सुबह के वक्त अपने घरों में ऊंधे मुंह। जासिमीन जो है ना, ये जासिमुन की जमा, जीम सामीम, परिंदे का अपने सीने को जमीन से लगाना, कभी आपने कोई मुर्दा परिंदा देखा? परिंदा उड़ता है ना, लेकिन जब मर जाता है ना तो ये जमीन पे इस तरह गिरता है कि इसका सीना जमीन के साथ पिचक जाता है। इस कैफियत को जासिमा या उस शख्स को जासिम कहते हैं। जिसूम भी यही है। मुराद क्या है कि जब इन पे अजाब आया ना तो ये मुंह के बल गिरे। आप इमेजिन करें कोई शख्स खड़ा है और पीछे से धक्का पड़ा, तो वो अपना ये सीना और मुंह जो है ना, मुंह के बल गिरने वाली कैफियत थी कि अपने घरों में वो इस तरह गिरे पाए कि सीधा होने की भी उनको मोहलत ना मिली। फतवल्ला अनहुम, हजरत सालेह अलैहि सलाम उनसे मुंह फेर के उठ गए। वकाल या कौमी, और कहने लगे मेरी कौम, लकद अबलगतुकुम रिसालत रब्बी, बेशक मैं पहुंचा चुका तुमको पैगाम अपने रब का। व नसहतु लकुम, और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन वलाकिल्ला तुहिब्बुनन्ना सेहीन, तुम मोहब्बत नहीं रखते, तुम पसंद नहीं करते खैर ख्वाहों को, नसीहत करने वाले तुम्हें बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते। और इस तरह वहां से गम खाते हुए चले गए। रिवायात में आता है कि इस कौम के ऊपर जो अजाब आया था वो भी एक बहुत ज्यादा इबरतनाक किस्म का तरीका था। जो ही इन्होंने ऊँटनी को काटना चाहा, ऊँटनी को तकलीफ दी, हजरत साले ने इनको समझाया कि देखो ऐसा ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कहते हैं कि एक औरत थी जो इस पूरे फितने का सबब बनी। उन्होंने ये शर्त लगाई, बल्कि बाज़ कहते हैं एक नहीं दो औरतें थी इंतहाई खूबसूरत। उन्होंने ये शर्त लगा दी कि जो शख्स नाका को ज़िबह करेगा हम उसको अपना आप दे देंगे। यानी हुसन का फितना कह लें, खूबसूरती का कह लें, जिस्म फरोशी का कह लें। अब वो इतनी बड़ी दावत थी कि क्योंकि उन औरतों को पता था कि सालेह अलैहिस्सलाम के होते हुए हमारा धंधा नहीं हो सकता, हम बाजार गर्म नहीं कर सकती और हमारी ख्वाहिशों पे पाबंदी लगेगी। चुनाचे एक शख्स जिसका नाम केदार बिन सालिफ था, आगे कुरान पाक में भी उसी शख्स के बारे में खास तौर पर कहा गया कि इज़िन बास अशकाहा, जब उठा उस कौम का सबसे बदबख्त शख्स, सबसे बुरा जो शख्स था वो उठा और जाके उसने ऐसी बात कर दी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब ये शख्स वहां से उठा उसने फिर हजरत सालेह अलैहि सलाम को मारा। पहले उठनी को मारने की कोशिश की और जूं ही उसने उठनी को मारा तो उठनी ने एक चीख मारी और जिस चट्टान के अंदर आई थी उसी के अंदर चली गई। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक था कि अल्लाह ने इसके जरिए से नहीं मारा। और फिर रात को बैठ के बातें करने लगे कि अब हमने उठनी को तो मार दिया तो हजरत सालेह हमसे नाराज होंगे, तो चलो आज रात उनको भी मार देते हैं। बिल्कुल वही कैफियत है जो नबी सल्लम के लिए हिजरत की रात को मक्का में दारुन नदवा में हो रही थी। पढ़ेंगे आप आगे इंशाअल्लाह ताला, आगे सूरत अनफाल और तौबा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि सीरत से जिनका ताल्लुक है। तो उसी रात पे नबी सल्लम को हुक्म हो गया कि आप अबू बकर सिद्दीक को लेकर यहाँ से निकल जाएं। और इस तरह से फिर वो निकले और पीछे कौम पे अजाब आया। जाते जाते धमकी दे गए कि तमत्तउ फी दारिकुम सलासता अय्यामिन, 3 दिन तक इंतजार करो। कहते हैं कि जब इन्होंने नबी की जुबान से इतनी बड़ी धमकी सुनी तो खौफजदा हो गए। कहते हैं खूब तेल वगैरह लगा के अपने आप को चौपड़ चापड़ के बैठ गए कि अब हमारी मौत आने वाली है। और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बुध के दिन कहते हैं ये धमकी दी थी उनको अजाब की। जुमेरात के दिन जब उठे तो इनके चेहरे जर्द हो चुके थे, पेल हो चुके थे, मर्द औरत बूढ़ा बच्चे सब ऐसे हो गए। अगले दिन जुमे को जब उठेंगे सबके चेहरे सुर्ख होंगे, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ जो उन्होंने कहा। और हफ्ते के दिन सबके चेहरे स्याह हो गए और कहा कि अब तौबा इस्तगफार करो, जो भी करो अब फायदा नहीं होगा। और फिर इस तरह इस कौम को अल्लाह ताला ने यूं खत्म कर दिया कि जैसे बसते ही ना थे। व मकरू मकरन व मकरना मकरन वहुम ला यशुरून, उन्होंने एक मकर किया, हमने भी एक साजिश की और हमारी साजिश जो है वो इससे बड़ी है जो ये लोग करते हैं। अब देखिए कि ये किससे हमें क्या सिखाते हैं कि अल्लाह को और अल्लाह के दीन को चैलेंज करने वाले कभी भी दुनिया में नहीं बचते। बहुत सारे इसके अंदर नुक्ते मिलते हैं। कैसे अल्लाह ताला ने इनको पकड़ा, इस एक कौम पे 3 अजाब आए थे। कुरान पाक में कुछ आयतों में रजफा का जिक्र है, फहजत हमर रजफा, जलजले का। फिर एक जगह आता है फहजत हमर सईखा, चिंघाड़ का आवाज। सईखा कहते हैं बहुत तेज आवाज को। और इसी तरह आंधियों के चलने का या आसमान से बादल के बरसने का भी आता है जिसमें आग थी। तो कहते हैं कि इस बदबख्त कौम के ऊपर 3 अजाब इकट्ठे आए। सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी अपने साथियों के साथ जब तबूक के सफर से आ रहे थे تو ہجر کے اس مقام پر آئے، آ رہے تھے یا جا رہے تھے، بہرحال گزر ہوا، کچھ لوگ آپ سے پہلے آ گئے تھے، تو انہوں نے یہ سوچ کے کہ پیچھے آنے والوں کے لیے کچھ کھانے پکانے کا انتظام کریں، وہاں ایک کنواں تھا، اس میں سے پانی لیا، آٹا گوندھ لیا اور روٹیاں بنائیں۔ جتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ہجر کی بستی ہے جہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا۔ آپ نے کہا کہ تم میں سے کسی نے یہاں کے کنویں سے پانی تو نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو لیا، کیونکہ دو کنویں تھے، ایک کنواں تھا جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور ایک وہ تھا جہاں سے یہ لوگ پیتے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ وہاں جہاں سے یعنی قوم پانی پیتی تھی اس کنویں سے آپ نے پانی لیا، تو آپ نے کہا اس آٹے کو جانوروں کو کھلا دو۔ اور تبوک کا سفر کتنی بھوک کا تھا آپ سنیں گے آگے انشاءاللہ، ایک دو صورتیں ہی رہ گئی ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے کہا کہ یہاں سے روتے ہوئے گزر جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قوم سمود پر جب عذاب آیا تو ایک شخص جس کا نام ابو رغال تھا، ابو رغال یہ مکہ میں تھا، عذاب آیا سارے مر گئے، لیکن جو ہی یہ حرم سے نکلا تو وہی عذاب جو قوم پہ آیا تھا وہ اس پہ آیا، اور اس کو پھر یہیں دفنایا گیا۔ اور آپ نے پھر مکہ سے باہر جب جاتے ہوئے رستے میں ایک قبر آئی تو آپ نے کہا یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ کوئی مکہ جا کے بیٹھ جائے، مدینہ جا کے بیٹھ جائے، عذاب آئے گا تو پھر بھی آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی بھی تھی جو دفن ہو گئی، تو صحابہ کرام نے جب اس قبر کو کھودا تو اس کے اندر سے سونے کی چھڑی نکلی۔ اور کہتے ہیں کہ جو طائف کے لوگ ہیں، بنو سقیف قبیلہ بہت معروف بڑا مالدار قبیلہ تھا، یہ اسی ابو رغال کی قوم میں سے ہے۔ تو کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ جب کوئی بات دین کی سامنے آئے تو اس کو سمجھیں، عمل کی کوشش کریں۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاء على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين